ये आकाशवाणी है। अब आप लवली निगम से समाचार सुनिए। प्रमुख कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों सहित विभिन्न मुद्दों पर संसद में विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में पहले स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही 11:30 बजे शुरू हुई तो कांग्रेस, वामपंथी दल, डीएमके, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी सहित विपक्षी सदस्यों का हंगामा जारी रहा। इस कारण सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। इससे पहले आज सवेरे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष की ओर से नियम 267 के अंतर्गत स्थगन नोटिस खारिज कर दिए। ये नोटिस प्रमुख कारोबारी समूह के खिलाफ रिश्वतखोरी के आरोपों, मणिपुर हिंसा और उत्तर प्रदेश के संबल में हिंसा के मामलों पर दिए गए थे। सभापति ने कहा कि राज्यसभा को सभापति के निर्देशों का पालन करना चाहिए। विपक्षी सदस्यों ने शोर शराबा जारी रखा और सदन को 11:30 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। उधर लोकसभा में पहले स्थगन के बाद जब दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, डीएमके और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य एक प्रमुख कारोबारी समूह पर कथित रिश्वतखोरी के आरोपों और अन्य मुद्दों को लेकर नारेबाजी करते हुए सदन के बीचों बीच आ गए। पीठासीन अधिकारी ने कई बार सदन में व्यवस्था बनाए रखने का अनुरोध किया लेकिन विपक्षी सदस्यों का विरोध जारी रहा। इस कारण सदन को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय अभियान बाल विवाह मुक्त भारत का शुभारंभ किया। अभियान का प्राथमिक लक्ष्य देश को बाल विवाह की कुप्रथा से मुक्ति दिलाना है। कार्यक्रम के दौरान बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल भी शुरू किया गया। इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की शुरुआत जागरूकता बढ़ाने, बाल विवाह रोकने और ऐसी घटनाओं की तुरंत सूचना देने से जुड़े अभियानों में सहयोग देने के लिए किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू तमिलनाडु की 4 दिन की यात्रा पर आज कोयम्बटूर पहुंची। वे कल वेलिंगटन ऊटी में रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज के एक कार्यक्रम में भाग लेंगी। वे संकाय सदस्यों और छात्र संघ के अधिकारियों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शुक्रवार को नीलगिरी में जनजातीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगी। सरकार तटवर्ती क्षेत्रों के आसपास कल से खनिज ब्लॉकों की नीलामी की पहली श्रृंखला शुरू करेगी। इस श्रृंखला में अरब सागर और अंडमान सागर में फैले 13 खनिज ब्लॉक शामिल हैं, जिनमें रेत, चूना मिट्टी और पॉलीमेटेलिक नोड्यूल का मिश्रण है। ये खनिज बुनियादी ढांचे के विकास, उच्च तकनीक निर्माण और हरित ऊर्जा संक्रमण के लिए महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्री एस जयशंकर कल इटली के फ्यूगी में हिंद प्रशांत साझेदारों के साथ G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हिंद प्रशांत क्षेत्र नई समस्याओं के साथ नए बदलावों का भी सामना कर रहा है। श्री जयशंकर ने कहा कि क्वाड संगठन की स्थापना एक उल्लेखनीय प्रगति है जिसने हिंद प्रशांत क्षेत्र में व्यापक सहयोग का अवसर सृजित किया है। श्रीलंका मंत्रिमंडल ने संसद में 219 अरब रुपए का पूरक बजट प्रस्तुत किया है। इस बजट राशि में 130 अरब रुपए प्रमुख बुनियादी सुविधाओं की योजनाओं और कर्जों पर सब्सिडी देने के लिए रखा गया है। बजट में सबसे बड़ा हिस्सा 130 अरब श्रीलंकाई रुपया सिलोन पेट्रोलियम कॉरपोरेशन की ओर से दिए गए कर्जों के ब्याज पर सब्सिडी के लिए निर्धारित है। 55वें भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का कल अंतिम दिन है। महोत्सव में आज तपन सिन्हा के फिल्म हारमोनियम सहित लगभग 70 फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। इस वर्ष फिल्म महोत्सव में भारतीय सिनेमा की 4 प्रतिष्ठित हस्तियों राज कपूर, मोहम्मद रफी, तपन सिन्हा और अकीकिनी नागेश्वर राव की जन्म शताब्दी भी मनाई जा रही है। दिल्ली के व्यापार मंडपम में जारी 43वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला IITF का आज आखिरी दिन है। मेले की थीम विकसित भारत 2047 है। 14 दिवसीय ये मेला वैश्विक स्तर पर भारत की आर्थिक और सांस्कृतिक समृद्धि को प्रदर्शित करता है। मौसम विभाग ने चक्रवात फेंगल के मद्देनजर तटीय तमिलनाडु में अत्यधिक वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आरके जिनामणि ने कहा कि तटीय आंध्र प्रदेश में भी तेज बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।